ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। केंद्र सरकार के अनुसार छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद से सबसे अधिक प्रभावित जिलों की संख्या 6 से घटकर 3 रह गई है। सुकमा जिले में 10 महिला सहित 27 माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण। इनमें से 16 माओवादियों पर 50 लाख रुपए का इनाम घोषित था। बस्तर वनमंडल के आसना में राज्य के पहले वन विज्ञान केंद्र की स्थापना की जाएगी। और राज्य शासन ने गोवर्धन पूजा पर्व पर 21 अक्टूबर को राज्य में सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद से सबसे अधिक प्रभावित जिलों की संख्या 6 से घटकर 3 रह गई है। प्रदेश में अब केवल बीजापुर, सुकमा और नारायणपुर ही वामपंथी उग्रवाद से सर्वाधिक प्रभावित जिले हैं। गृह मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि ये आंकड़े नरेंद्र मोदी सरकार के नक्सल मुक्त भारत के संकल्प की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति है। मंत्रालय ने कहा कि इस वर्ष 800 से अधिक उग्रवादी गिरफ्तार हुए हैं, जबकि 312 वामपंथी उग्रवादियों को मार गिराया गया है। 1600 से अधिक उग्रवादी आत्मसमर्पण कर मुख्य धारा में शामिल हुए हैं। मंत्रालय ने कहा कि मोदी सरकार राष्ट्रीय कार्य योजना और नीति के कठोर कार्यान्वयन के माध्यम से 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। सुकमा जिले में आज 27 माओवादियों ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। इनमें 10 महिला माओवादी भी शामिल हैं। जिले के पुलिस अधीक्षक किरण चौहान ने बताया कि आत्मसमर्पण करने वाले 16 माओवादियों पर 50 लाख रुपए का इनाम भी घोषित था।
आज 27 नक्सली जिनपे 50 लाख का इनाम छत्तीसगढ़ शासन द्वारा रखा गया था, उन्होंने आत्मसमर्पण किया है। इसमें पीएलजी बटालियन नंबर 1 सीवाईपीसी ओएम लखमू, उसके अलावा अन्य बटालियन के नक्सली सम्मिलित है। उसके अलावा कुंटा एरिया कमेटी, ईओबी रीजन, इन सभी एरिया से नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है।
वहीं कोंडागांव जिले में भी 5 लाख रुपए की एक इनामी महिला माओवादी गीता उर्फ कमली सलाम ने आत्मसमर्पण किया है। आत्मसमर्पण करने वाले सभी माओवादियों को राज्य सरकार की नई पुनर्वास नीति के तहत 50-50 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इस बीच खबर मिली है कि कांकेर जिले के कामतेड़ा बीएसएफ कैंप में भी 50 माओवादी आत्मसमर्पण करने के लिए पहुंचे हैं। बस्तर वनमंडल के आसना में राज्य के पहले वन विज्ञान केंद्र की स्थापना की जाएगी। भारत सरकार के राष्ट्रीय कैंपा मिशन द्वारा इसकी स्वीकृति दे दी गई है। वन विज्ञान केंद्र के संचालन, प्रशिक्षण और पाठ्यक्रमों के निर्धारण के लिए जगदलपुर के मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में प्रदेश स्तरीय सलाहकार समिति का गठन किया गया है। इस समिति में 8 विषय विशेषज्ञों को भी शामिल किया गया है। गौरतलब है कि राष्ट्रीय कैंपा की 23वीं क्रियान्वयन समिति की बैठक में पायलट बेसिस पर सहित झारखंड, ओडिशा, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में एक एक वन विज्ञान केंद्र शुरू करने का निर्णय लिया गया है। उप मुख्यमंत्री और खेल तथा युवा कल्याण मंत्री अरुण साव ने नवा रायपुर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बस्तर ओलंपिक की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में विभागीय अधिकारियों और बस्तर संभाग के सभी जिला खेल अधिकारी शामिल हुए। इस दौरान श्री साव ने बस्तर ओलंपिक के विकास खंड स्तरीय आयोजनों पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। उन्होंने खेल मैदानों की उपलब्धता, उनकी मैपिंग, भोजन, यातायात, आवास, प्राथमिक चिकित्सा, निर्णायकों और रेफरियों की व्यवस्था के लिए तैयारी करने को कहा। साव ने कहा कि इस बार बस्तर ओलंपिक में युवाओं की भागीदारी ऐतिहासिक रहेगी।
3,09,411 पंजीयन हो चुके हैं। पंजीयन 5 दिन और बचा है, 20 तारीख तक पंजीयन होना है। बस्तर ओलंपिक को लेकर जो उत्साह का वातावरण है, तो ये इतिहास बनने वाला है।
बस्तर ओलंपिक के तहत पंजीयन कराने की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर निर्धारित की गई है। बस्तर ओलंपिक में विकास खंड स्तरीय प्रतियोगिताएं 25 अक्टूबर से शुरू होंगी, जो 5 नवंबर तक आयोजित की जाएंगी। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस पर गुजरात के एकता नगर स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में आयोजित होने जा रही एकता परेड में छत्तीसगढ़ की झांकी का चयन किया गया है। ये झांकी बस्तर की बदलती पहचान और विकास यात्रा पर केंद्रित होगी। झांकी के माध्यम से बस्तर में हो रहे बदलाव के साथ ही संघर्ष से विकास की ओर और भय से विश्वास की ओर का संदेश दिया जाएगा। ये जानकारी केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी सूची में दी गई है, जिसमें छत्तीसगढ़ के साथ ही जम्मू कश्मीर, गुजरात, महाराष्ट्र, मणिपुर, उत्तराखंड, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, एनडीआरएफ और एनएसजी की झांकियां भी शामिल हैं। एकता परेड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह स्वयं उपस्थित रहेंगे और चयनित राज्यों की झांकियों का अवलोकन करेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि यह झांकी न केवल बस्तर की सांस्कृतिक आत्मा को प्रदर्शित करेगी बल्कि छत्तीसगढ़ के समग्र विकास, एकता और लोक गौरव की झलक भी पेश करेगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में आज सड़कों पर आवारा मवेशियों के कारण हो रही दुर्घटनाओं को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई। इस मामले में कोर्ट ने मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर पूछा है कि अब तक जारी निर्देशों का कितना पालन किया गया है। कोर्ट के निर्देश के बाद बिलासपुर कलेक्टर ने शपथ पत्र पेश कर जानकारी दी है कि पहले उठाए गए कदमों पर तेजी से अमल हो रहा है। इस मामले की अगली सुनवाई अगले महीने नवम्बर में होगी। गौरतलब है कि सड़कों पर आवारा मवेशियों के कारण हो रही दुर्घटनाओं को लेकर संजय रजक ने हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की है। हाईकोर्ट ने भी इस मामले को संज्ञान में लिया है। वर्ष 2021 में छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग पीएससी की परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति के मामले में आज सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायाधीश बीडी गुरु की डिवीजन बेंच ने सुनवाई के दौरान राज्य शासन से पूछा कि सीबीआई की जांच कब तक पूरी हो जाएगी। कोर्ट ने 6 नवम्बर को होने वाली अगली सुनवाई में शासन से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। गौरतलब है कि राज्य शासन ने हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में नियुक्ति देने के आदेश के खिलाफ अपील की है जिस पर आज सुनवाई हुई। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर आयोजित होने जा रहे सरदार एट द रेट 150 यूनिटी मार्च के संबंध में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने आज रायपुर में पत्रकारों से बातचीत की। इस अवसर पर श्री साव ने आयोजन की रूपरेखा प्रस्तुत की और युवाओं से सक्रिय भागीदारी का आह्वान किया। उन्होंने बताया कि यूनिटी मार्च 2 चरणों में संचालित होगा। पहले चरण में 31 अक्टूबर से 25 नवम्बर तक सभी जिलों में 3 दिनों तक 8 से 10 किलोमीटर की पद यात्रा निकाली जाएगी। इससे पहले स्कूलों और कॉलेजों में निबंध प्रतियोगिता, वाद विवाद, सरदार पटेल के जीवन पर संगोष्ठी और नुक्कड़ नाटक जैसी गतिविधियां होंगी। इन पदयात्राओं का नेतृत्व राज्य कैबिनेट मंत्री, सांसद और माई भारत तथा एनएसएस के अधिकारी करेंगे। श्री साव ने बताया कि इस अभियान का समापन 6 दिसंबर को होगा। इच्छुक युवा इस राष्ट्रव्यापी अभियान में भाग लेने के लिए माई भारत पोर्टल पर अपना पंजीकरण कर सकते हैं। प्रदेश के नर्सिंग महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 17 अक्टूबर कर दी गई है। काउंसलिंग समिति के अध्यक्ष ने इस संबंध में सूचना जारी की है। इस वर्ष काउंसलिंग के जरिए बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक डिप्लोमा इन साइकियाट्रिक नर्सिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश दिया जाएगा। काउंसलिंग, आवंटन और प्रवेश संबंधी सभी जानकारियां चिकित्सा शिक्षा संचालनालय की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। राज्य शासन ने गोवर्धन पूजा पर्व पर 21 अक्टूबर को राज्य में सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। ये अवकाश राज्य के सभी शासकीय कार्यालयों और बैंकों पर लागू होंगे। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है। रेलवे ने सारनाथ एक्सप्रेस को 1 दिसंबर से 15 फरवरी के बीच विभिन्न तिथियों में कुल 66 दिन रद्द करने की घोषणा की है। गौरतलब है कि ठंड के दौरान कोहरे की आशंका को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। केंद्र सरकार द्वारा 9 अक्टूबर से तंबाकू मुक्त युवा अभियान 3.0 का शुभारंभ किया गया है। इस अभियान का उद्देश्य बच्चों और युवाओं को तंबाकू और नशे की लत से दूर रखना, उन्हें स्वस्थ जीवन की ओर प्रेरित करना और जो तंबाकू छोड़ना चाहते हैं उन्हें सहयोग प्रदान करना है। अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के प्रत्येक जिले में स्कूलों और कॉलेजों में जागरूकता अभियान, छात्र परामर्श सत्र, एनएसएस, एनसीसी, स्वयंसेवकों के प्रशिक्षण तथा तंबाकू के दुष्प्रभावों पर प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। शराब घोटाला मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की रिमांड अवधि 14 दिन बढ़ा दी गई है। अब वे 29 अक्टूबर तक जेल में रहेंगे। रिमांड अवधि खत्म होने के बाद आज उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी और आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ईओडब्ल्यू की विशेष अदालत में पेश किया गया। और अब पेश है मौसम का हाल। दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी के साथ ही प्रदेश में हल्की ठंड महसूस होने लगी है। मौसम विज्ञानी डॉक्टर गायत्री ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि अगले 24 घंटों के दौरान मानसून की छत्तीसगढ़ से विदाई हो जाएगी।
अगले 24 घंटों में मानसून का वापसी जो है पूरा छत्तीसगढ़ से होने की संभावना है और आज से लेकर अगले 4-5 दिन तक अनेक स्थानों पर मुख्य रूप से शुष्क रहने की चांसेस है।
मौसम विभाग के अनुसार अगले 4-5 दिनों तक प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार के अनुसार छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद से सबसे अधिक प्रभावित जिलों की संख्या 6 से घटकर 3 रह गई है। सुकमा जिले में 10 महिला सहित 27 माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण। इनमें से 16 माओवादियों पर 50 लाख रुपए का इनाम घोषित था। बस्तर वन मंडल के आसना में राज्य के पहले वन विज्ञान केंद्र की स्थापना की जाएगी और राज्य शासन ने गोवर्धन पूजा पर्व पर 21 अक्टूबर को राज्य में सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।